ये चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण कालिया ह्रद में, अर्थात उस तालाब में जहां की कालिया निवास कर रहा था, उसमें कूद पड़े और बहुत ही जोर से पानी को छिड़कने लगे, गोल गोल घूमने लगे और एक मतवाले हाथी के समान वहां पर विहार करने लगे। और इतना कोलाहल हलचल मच गया जल के भीतर कि कालिया तुरंत वहां पर चले आया ये देखने के लिए कि कौन है ये व्यक्ति जिसने ये साहस किया कि मेरे घर पे, मेरे सदन पे आकर अतिक्रमण करे, आक्रमण करे। भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करने के बाद भी कालिया का हृदय पिघल नहीं गया बल्कि द्वेष बढ़ गया और उसने बड़े जोर से भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पे डस दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां पर गोल गोल घूमते रहे और कालिया को भी घूमना पड़ा क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को डसना चाहता था। लेकिन कृष्ण भगवान इतने निपुणता से, दक्षता से घूम रहे थे तेजी से कि कालिया उनके पीछे पीछे नहीं जा पाए। धीरे धीरे कालिया थकने लगा और फिर भगवान श्री कृष्ण वैसे उन्होंने कालिया का एक फण पकड़ लिया, नीचे किया और फणों के ऊपर वो चढ़ गए और वहां पर चढ़ के उन्होंने सुंदर नृत्य करना आरंभ किया। कल शाम को हम ये चर्चा कर रहे थे कि देवी देवतागण भी गंधर्व लोक से, सिद्ध लोक से, विद्याधर लोक से, अप्सरागण इत्यादि सारे आए भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत और अपूर्व नृत्य देखने के लिए और उन्होंने साथ में नाना प्रकार के वाद्य बजाए, साथ में उन्होंने संगीत, सुंदर सुंदर गीत गाए और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में वो नृत्य कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दक्षता से नृत्य कर रहे थे कि ये देवी देवता विद्याधर इत्यादि गंधर्व ये भगवान के साथ रह नहीं पाए और फिर आखिर में उन्होंने ताल से ताल मिलाना छोड़ दिया क्योंकि वो उनका सामर्थ्य नहीं था और इस प्रकार से वो अकेले ही नृत्य करने लगे, वाद्य बजाने लगे और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के फणों पर इतने जोर से नृत्य करना शुरू किया, वैसे तो हल्के कदम से लेकिन कालिया को बड़ा जोर लग रहा था। उस ऐसा लग रहा था कि सारा मानव, सारा ब्रह्मांड उसके फणों के ऊपर है और फिर कालिया बहुत थक गया और जब उसके शरीर के भीतर सारा विष खत्म हो गया तो फिर खून अपने आंखों से, नसिकों से, मुख से आना आरंभ हुआ। आचार्य ये समझाते हैं कि ये इस बात का प्रतीक है कि इस समय कालिया के भीतर जो भी द्वेष था वो सब खत्म हो गया, जो भी अशुद्धता थी भगवान ने इस पीड़ा के माध्यम से कालिया को शुद्ध कर दिया। जिस प्रकार पूतना भी द्वेषी थी जब वो श्री कृष्ण के पास आई थी और जब स्तनपान कराना शुरू किया तो भगवान ने पूतना का प्राण ही खींच लिया और वो प्राण खींचते समय पूतना को इतना दर्द हुआ, चीख चीख के वो कृपा याचना कर रही थी कि छोड़ो छोड़ो मुझे, लेकिन कृष्ण ने नहीं छोड़ा और सारा प्राण ही खींच दिया। तो इस दर्द की वजह से पूतना के हृदय में जो भी द्वेष था, जो भी अनर्थ थे, सारे खत्म हो गए और फिर कृष्ण भगवान ने उनके ऊपर उस शुद्ध हृदय में भगवत प्रेम प्रदान कर दिया और पूतना को अपने ही धाम में एक धात्री का स्थान दिया। उसी तरह कालिया भी बड़े द्वेष और क्रोध से भगवान के सामने आया था, लेकिन भगवान के नृत्य की वजह से कालिया को इतना दर्द हुआ, इतनी अति पीड़ा हुई कि प्राय प्राण त्यागने ही वाला था कालिया। लेकिन उस समय उसके भीतर इस पीड़ा की वजह से, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श की वजह से सारा द्वेष क्रोध खत्म हो गया और फिर मुख से खून आने लगा विष के बजाय। और फिर कालिया को समझ में आया कि मेरा जो शत्रु है गरुड़, इससे भी हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली ये मेरा नया शत्रु है। ये तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, भगवान के अलावा और कोई नहीं ऐसे मेरे साथ युद्ध कर सकता है, मेरा दमन कर सकता है। और जैसे ही कालिया के मन में ये विचार आया कि ये भगवान है, मुझे उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे उनके शरण में जाना चाहिए, वैसे ही उनके उसके शरीर में भी ऐसे परिवर्तन होने लगे। अब कालिया के रानियां जो पत्नियां थीं, उन्होंने भी ये देखा। जब वो दूर से ये दृश्य देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण कालिया के फणों पर नृत्य कर रहे हैं और कालिया जोर जोर से युद्ध कर रहा है, डसने का प्रयास कर रहा है, तो कालिया की पत्नी के मन में क्या विचार आए उसके बारे में भी आचार्य समझाते हैं। वो कहते हैं कि कालिया के पत्नी जो नाग पत्नियां हैं, वो वैसे बड़े गंभीर भक्त थी भगवान के, और उन्होंने बहुत कोशिश किया था प्रचार करने के लिए अपने पति को कि भक्त बनो, कृष्ण के शरण में जाओ, लेकिन कालिया ने एक नहीं मानी थी। ये अक्सर यहां भी होता है मनुष्य समाज में, कभी पति भक्त होते हैं तो पत्नी भक्त नहीं होते, पति पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं वो सुनते नहीं है, कभी कभी पत्नी भक्त होती है पति को समझाने का प्रयास करते हैं पति समझते नहीं है, और अगर दोनों पति पति भक्त हो तो कभी बच्चे भक्त नहीं, कभी बच्चे भक्त हो तो माता पिता नहीं, आपस में समझाने का प्रयत्न करते हैं कभी समझ जाते हैं कभी नहीं समझते हैं। तो कालिया की पत्नी ने भी बहुत प्रयत्न किया था कालिया को समझाने के लिए कि आप भी भक्त बन जाइए, लेकिन कालिया ने साफ इनकार कर दिया था। और इसलिए जब श्री कृष्ण ने कालिया के फणों के ऊपर नृत्य करना आरंभ किया और कालिया का द्वेष खत्म नहीं हो रहा था, वो और भी ज्यादा जहर कृष्ण के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, तो कालिया की पत्नियों ने सोचा कि अगर ये भगवान श्री कृष्ण हमारे पति का वध भी कर दें तो इसमें कोई शोक की बात नहीं है, कम से कम शुद्ध तो हो जाएगा, मुक्त तो हो जाएगा, नहीं तो इसके भक्ति मार्ग में आने की हमें तो कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती, और क्या उपाय है इसको भक्ति में लाने के लिए। तो इस प्रकार से जैसे ही कालिया की पत्नी ऐसे सोच रहे थे कि अगर भगवान हमारे पति को मार भी डाले तो कोई परवाह नहीं, ठीक उसी समय कालिया ने अपने हृदय में भगवान का शरण लिया और ये लक्षण पहचान गए कालिया की पत्नियां, और उन्होंने सोचा कि अरे अब ये परिवर्तन हमारे पति के हृदय में हो गया, अब वो वैष्णव बन गए हैं, अब जब वो भगवान के श्री कृष्ण के शरण में आए हैं तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब वो कोई साधारण द्वेषी जीव नहीं है, वो तो वैष्णव बने हैं। तो इसलिए सारे नाग पत्नी एक ग्रुप में आकर, दल में आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आए, और फिर कल से कथा अभी जारी रखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्णस्य गर्भ जगतो दिभरा विसन्नम् पाष्णी प्रहार परिगुण फणताप तत्रम् दृष्ट्वा हिम आद्यम उपसेदुरमुष्य पत्न्या आर्ताश्लथद्वसन भूषण केश बंधा। कृष्णस्य, वो कृष्ण को देख रहे थे, वो कृष्ण जो कि गर्भ जगतो, जिनके गर्भ में उदर में सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं, ये है भगवान का मतलब, जिनके पेट में जिनके गर्भ में सारी सृष्टि है और वही श्री कृष्ण इस हरेक भौतिक ब्रह्मांड के हरेक अणु के भीतर वो स्थित है। ये है भगवान। अब देखिए, हम इस मंदिर में हैं, लेकिन क्या मंदिर हमारे भीतर हो सकता है? हम गाड़ी के भीतर बैठते हैं, कि गाड़ी हमारे पेट के भीतर हो सकती है? नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए दोनों संभव है। सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में, उनके उदर में है, पेट में, और वो हरेक अणु में स्थित है। ये कैसे संभव है? ये अचिंत्य है। यही तो भगवान श्री कृष्ण है। ये है भगवान का मतलब। तो इस प्रकार से नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि नाग पत्नियां जब भगवान श्री कृष्ण के सामने आईं, तो वो सोच रही थी कि किसी न किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके अब उनको रोकना चाहिए। तो अब नाग पत्नियां क्या देख रही हैं? अति भर अवसन्नम, अति भार, कृष्ण इतने भारी हो गए हैं, उस वजन की वजह से कालिया बहुत थक गया है। पार्श्नि प्रहार परिगुण फणताप आतपत्रम, और भगवान के पार्श्नि प्रहार, उनके चरण कमलों के पिछले भाग के प्रहार से परिगुण फणा, और जो फण थे कालिये के, वो बिल्कुल प्राय नष्ट हो चुके थे। वो फण जो कि आतपत्रम, जो कि छत्री के बराबर थे। दृष्ट्वा हिम आद्य उपसेदुर अमुष्य पत्न्या, दृष्ट्वा अहिम, तो अही उस सांप को, कालिया को देखा पत्नियों ने, अमुष्य पत्न्या, और क्या दशा थी कालिया की उस समय? आर्ता, बड़े दुखी थे। और इस प्रकार से कालिया की पत्नी सब जल्दी से सामने आए और फिर उन्होंने अपने बच्चों को श्री कृष्ण के सामने रख दिया। बच्चों को रखने का क्या प्रयोजन था? क्योंकि बच्चों को देखने से व्यक्ति का हृदय थोड़ा पिघल जाता है। अगर आदमी थोड़ा गुस्सा है तो उसके सामने अगर छोटा बच्चा रख दिया तो फिर आदमी सोचा, अभी क्या मैं बोलूं, क्या बोल सकता हूं मैं। तो इस प्रकार से छोटे बच्चे को सामने करना, ये एक तरीका होता है सामने वाले व्यक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए। ये तकनीक जो है, इसका बार बार शास्त्रों में प्रयोग किया जाता है। जैसे जब नरसिंह देव के सामने सारे देव देवता आए, तो नरसिंह देव का वो उग्र और भयानक रूप देखकर सारे देवता पीछे हट गए, वो सामने नहीं आ पाए। लेकिन अंततः उन्होंने क्या किया? प्रहलाद को आगे किया। प्रहलाद तो 5 साल का मासूम बच्चा था, और वाकई भगवान ने प्रहलाद को ऐसे देख लिया और उनका गुस्सा खत्म हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। तो उसी प्रकार से नाग पत्नियां भी अपने बच्चों को सामने लेकर आईं, और इसका अर्थ यह भी था कि वो बताना चाह रही थी भगवान को कि हम तो विधवा हो ही जाएंगे अगर आप हमारे पति की हत्या करेंगे तो, लेकिन साथ साथ ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, देखो कितने सांप के बच्चे छोटे छोटे थे उधर, ये भी पिताहीन हो जाएंगे, तो इनकी रक्षा के लिए कौन रहेगा? पत्नियों तो ऐसे कहा नहीं अभी तक, लेकिन इशारा काफी होता है। इससे भगवान को बताना चाहते थे कि इन बच्चों के लिए माता पिता दोनों होने चाहिए, पिता नहीं है तो कैसे होगा। तो इस प्रकार से कालिया के पत्नियां सामने आई और फिर प्रार्थना करने लगी। नाग पत्नियां ऊच हो, न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिन् तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोसुतानाम् अपितुल्यदृष्टिः धत्सेदमं फलम् एवानुशंसन्। हे प्रभु, न्यायो हि दंडः, आपने जो दंड दिया है ये बिल्कुल सही है, ये न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है, आपने बिल्कुल गलती नहीं की। तो नाग पत्नियां भगवान के भक्त हैं, धर्म को जानते हैं, इसलिए भगवान को कभी कोसते नहीं हैं। यहां हम देखते हैं संसार में अगर परिवार में कोई कठिनाई आई तो पहली गाली जाती है भगवान को, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम इतने अच्छे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, उनको देखो वो लोग कितने पापी हैं, कितने दुष्ट हैं, क्या नहीं करते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान ने हमारे साथ क्यों किया। अब देखिए, नाग पत्नियों को इतना ज्ञान था, इतनी भक्ति थी कि भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं और भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, आपने हमारे पति को दंड दिया है और इतना भारी दंड कि प्राय उसके प्राण निकल गए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत किया है, आपने सही दंड दिया हमारे पति को। न्यायो ही दंडः, क्यों सही दंड दिया है, कृत किल्बिषे, क्योंकि इसने बहुत पाप किए हैं, बहुत अन्याय किया है, बहुत अत्याचार किया है, इसलिए आपका जो दंड है वो बिल्कुल उचित है। और आखिर तव अवतार खल निग्रहाय, आपका अवतार खलों का दमन करने के लिए है। निग्रहाय, खल मतलब जो द्वेषी लोग होते हैं, असुर होते हैं, दुष्ट लोग, दुष्टों का दमन करने के लिए ही तो आपने अवतार लिया है, तो ये आपका काम है, आप वो कर रहे हैं, और आप भला कैसे कोई गलती कर सकते हैं। वैसे आप किसी का पक्षपात नहीं करते, नहीं किसी से द्वेष करते हैं। रिपुः सुतानाम् अपि तुल्य दृष्टिर्, रिपु मतलब शत्रु, सुतानाम् मतलब अपने बच्चे, तो चाहे कोई अपना बच्चा हो या आपके शत्रु हो, तुल्य दृष्टि, आप समान दृष्टि से देखते हैं, ये भगवान के गुण हैं। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः, भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं कि मैं सारे प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं, नमे द्वेष्य न अस्ति प्रियः, न मेरा कोई ना मैं किसी से द्वेष करता हूं और न मेरा कोई अति प्रिय है, सब मुझे प्रिय हैं। भगवान तो सब प्राणियों के पिता हैं, इसलिए भगवान सबसे प्रेम करते हैं। भले कोई साधारण प्राणी या जीव भगवान को भूल जाए, भगवान को अपना शत्रु समझे, भगवान से द्वेष करे, लेकिन भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं। भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम में घटन बिल्कुल नहीं होता। जिस प्रकार से माता पिता भले अपने बच्चों के कार्यों से दुखी हो जाए कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, गलत मार्ग में चला गया है, लेकिन बच्चों से द्वेष नहीं करेंगे, प्रेम हमेशा हृदय में रहेगा। तो इसी प्रकार नाग पत्नियां कह रही हैं, रिपोह सुतानाम अपि तुल्य दृष्टिर, तुल्य दृष्टि से आप सबको देखते हैं, धत्से दमम फलम एवानुशंसम, इसलिए आपने जो दमम या दंड हमारे पति को दिया है वो उसके लिए बिल्कुल सही है, और ये दंड केवल उसके उद्धार के लिए है, उसके भलाई के लिए है। तो ये भी कालिया की पत्नियां समझती थी कि भगवान जो भी हमारे साथ करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। तो भक्ति के दृष्टि से हमें सब कुछ देखना चाहिए, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे। तो आगे नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं, हमें इन प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनना चाहिए और चिंतन मनन करना चाहिए इस विषय के ऊपर, क्योंकि भक्तों की प्रार्थनाएं जो होती हैं, खास करके जो श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में आती हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धर्मस्य तत्वम निहित गुहायम महाजनो येन गतः सपन्था, धर्म के सिद्धांत वो महान भक्तों के हृदय में छुपे हुए होते हैं, और जब वो प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान के सामने, तो ये गूढ़ तत्व, ये अलग अलग भक्ति के अध्यात्म के सिद्धांत जो हैं, वो बाहर प्रकट होते हैं शब्द रूप में। तो ये प्रार्थनाएं क्या है, ये प्रार्थनाएं वास्तव में उन भक्तों की शब्द रूपी भक्ति है, और इस भक्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन प्रार्थनाओं का उच्चारण करने से हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है और हमें पता चल सकता है कि हमें भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, न कि हम भगवान के सामने जाए धनम देही रूपम देही, हमें ये दीजिए वो दीजिए, नहीं, भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए ये सब भक्त श्रीमद् भागवत में हमें सिखाते हैं। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दण्डोऽशतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डसूक्त्वम् अमोष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनुग्रह एव सम्मतः। हे प्रभु, अनुग्रहो अयम् भवतः कृतो हिनः, ये जो आपने किया है ये वाकई में ही भवतः आपके द्वारा अनुग्रह है हमारे ऊपर। अनुग्रह मतलब कृपा। तो नाग पत्नियां बोल रही हैं कि ये आपने गलत काम किया ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, इस ये तो दूर की बात रही, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आपने वास्तव में हम सब के ऊपर बड़ी असीम कृपा की है, अनुग्रहाय। और दंडो असताम ते खलु कल्मशाप, असताम मतलब जो सताम नहीं है, सत मार्ग में जो चलते हैं उनको सताम कहते हैं, जो महान ऋषि संत भक्त होते हैं, और जो असत के मार्ग में चलते हैं उनको असताम कहते हैं। तो खलु दुष्ट, जो असत के मार्ग में चलने वाला हमारा पति जो कि दुष्ट था उसको आपने दंड दिया, दंडो असताम ते खलु, लेकिन इसका फल क्या हुआ, कलमश अपह, उसके सारे हृदय के कलमश अनर्थ सब नष्ट हो गए। अपहा का मतलब है नष्ट करा देना, कलमश अपहा, सारे हृदय का मल आपने स्वच्छ कर दिया है। यहां खानापुर में नदी चलती है, कौन सी नदी है, मलप्रभा। ये मलप्रभा नहीं है, मल का प्रभा, ये कैसे है, मल की प्रभा। तो जब मैंने पूछताछ किया तो पता चला कि वास्तव में ये मलप्रभा नहीं है, ये अपभ्रंश है। पहले ही इसका नाम था मल अपहा, अपहा मतलब स्वच्छ करना, साफ करना। जो हमारे हृदय की गंदगी को स्वच्छ करती है वो नदी है मल अपहा, मलापहारी पुराणों में भी वर्णन आता है, लेकिन अभी मल प्रभा बना दिया, इसको अर्थ ही पूरा बदल गया। तो मल अपहा, तो मल को स्वच्छ कर देने वाली नदी मलापहा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दंड देने की वजह से कलमश अपहा, कालिये के भीतर जो भी दोष थे, जो भी अनर्थ थे, सब स्वच्छ हो गए। इसका मतलब है कि भगवान एक माता पिता के समान है। जब माता पिता बच्चों को दंड देते हैं तो प्रेम से ही दंड देते हैं, भले उनके मन में क्रोध हो, लेकिन वो क्रोध भी बच्चों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए कभी माता पिता के कार्य में दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम ही है। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को अर्थात प्राणियों को दंड देते हैं, कष्ट देते हैं, तो इसी प्रकार से प्रेम से देते हैं। ये समझने वाली बात है। कृष्ण समान दृष्टि रखते हैं और कृष्ण पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान के प्रेम में और उनके दंड में कोई अंतर नहीं है। तुल्य दृष्टि, इसलिए जब वो असुरों का वध करते हैं तो असुरों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। पूतना की बात हम कर ही चुके हैं कि पूतना को मुक्त तो किया ही, लेकिन अपने धाम में एक धात्री का स्थान दिया, जो कि एक बहुत ऊंचा स्थान है। तो इस प्रकार से भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया, चाहे वो शिशुपाल हो, कंस हो, दंतवक्र हो, सबको संसार के चक्र से मुक्त करा दिया। यह है भगवान की असीम कृपा। दुष्टों को भी जब वो नाश करते हैं, नाश करके उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। असुरों का वध करना ये भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा उन असुरों के ऊपर है, जिससे कि वो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करा देते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने बच्चों को भी देखते हैं, अगर बच्चे कोई बुरा काम करते हैं तो उनको दंड देने में वो हमेशा आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जैसे कि भौमासुर, भौमासुर भगवान श्री कृष्ण के और भूमि देवी के पुत्र थे। जब भगवान ने वराह रूप का अवतार धारण किया था, उन्होंने पृथ्वी लोक को अपने दंष्ट्रों के स्थित पे ऊपर स्थित करके उठाया था और उस स्पर्श से भूमि देवी के पुत्र हुए जिनका नाम था भौमासुर। और ये भौमासुर असुर था, बहुत बुरे काम कर रहा था। और इस प्रकार से इंद्रदेव की याचना पर भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया, हालांकि यह भौमासुर उनका पुत्र था। तो यह है भगवान की स्थिति, अपना पुत्र भी हो अगर गलत काम कर रहा हो तो उसे दंड दो, शत्रु भी हो अगर शरण में आया है उसका उद्धार करो। तो भगवान के प्रतिनिधि इस समाज में नारदेव राजा होते हैं, नेता होते हैं, उनको भी ऐसे ही रहना चाहिए। राजा को भी देखना चाहिए कि अगर राजकुमार भी कोई गलत काम कर रहा हो उसे दंड देना चाहिए, और अगर मेरा शत्रु भी मेरे शरण में आ रहा हो तो उसे क्षमा कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भी ऐसे समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो आगे नाग पत्नियां बोल रही हैं, यद दंड शुकत्वम अमुष्य देहिनः। वास्तव में सांप का शरीर किसको मिलता है? जो बहुत द्वेषी है, पापी है, नहीं तो उसे सांप का शरीर क्यों मिलेगा? तो नाग पत्नियां बोल रही हैं कि हमारे पति को ऐसे सांप का शरीर मिला है क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पाप किए थे। क्रोधो अपिते अनुग्रह एव सम्मतः। इसलिए आपका जो क्रोध है इस कालिया के प्रति, हमारे पति के प्रति, ये केवल आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है। तो ये भी हमें ऐसे पुण्यवान लोग जो होते हैं हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट हो तो हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, कभी भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। और फिर आगे नाग पत्नियां अपने आश्चर्य की भावना को व्यक्त कर रही हैं। किस बारे में नाग पत्नियां आश्चर्यचकित हो गई थी? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तपसु तप्तम किमनेन पूर्वम निरस्त मानेन च मानदेन धर्मोऽथ वा सर्वजनानुकंपया यतो भवां स्तुष्यति सर्वजीवः। किम, ऐसे क्या कार्य अनेन पूर्वम पूर्व जन्मों ने हमारे पति ने किए थे? तपः सुतप्तम, हमारे पति ने ऐसे कौन से प्रकार के तपस्या बिल्कुल अच्छे ढंग से किए थे? निरस्त मानेन च मान देनिन, और दूसरों को पूरी तरह से मान देते हुए और अपने हृदय को अहंकार से मुक्त करते हुए ऐसे कौन सी तपस्याएं सुदृढ़ रूप से उन्होंने किए थे? हम ये जानना चाहते हैं, ये कौन सी तपस्या उसने किए जिसकी वजह से ये तो भवान स्तुष्यति सर्वजीवा, आप जो कि सर्व जीवों के जीव हैं, आप उसके ऊपर संतुष्ट हुए? आपके कालिये के ऊपर प्रसन्न होने का कारण क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। उसने कौन सी भयंकर तपस्या की होगी ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। धर्मोथवा सर्व जनानुकंपया, या तो सारे प्राणियों के ऊपर अनुकंपा की दृष्टि रखते हुए कौन से धर्मों के सिद्धांतों का पालन किया होगा, कौन से विधि विधान किए होंगे का पालन किया होगा जिससे कि आपकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर रही, जिससे कि आप उसके ऊपर प्रसन्न हुए, ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो नाग पत्नियां थोड़ी बहुत भ्रमित हो गई हैं, लेकिन भक्ति भाव में भ्रमित हो गई हैं, केवल अपने पति के अहो सौभाग्य के बारे में भ्रमित हो गई हैं कि हमारे पति के ऊपर आप इतनी मात्रा में संतुष्ट हुए, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ प्रदा। जब तक कि हमारे सारे पापों का अंत नहीं होता और जब तक पर्याप्त मात्रा में हमारी सुकृति या पुण्य की पूंजी बढ़ती नहीं, तब तक हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कालिया की पत्नियां सोच रही हैं कि ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे हमारे पति ने कि यह सौभाग्य उनको प्राप्त हो गया। और एक बात नागपत्नियां कह रही हैं, निरस्त मानेन च मान देना, निरस्त मानेन मतलब अहंकार की भावना से मुक्त होकर, और मान देना मतलब दूसरों को सदा मान देने के लिए तैयार होना। इसका मतलब है कि नाग पत्नियां भक्त होने के नाते अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हम अहंकार से नहीं मुक्त होते, जब तक दूसरों को सम्मान देने के लिए हम तैयार नहीं होते, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में सबसे जो महत्वपूर्ण एक श्लोक हमारे लिए है वो कौन सा है, त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जब तक कि हम तृण से भी अधिक नम्र न बने, वृक्ष से भी अधिक सहनशील न बने, दूसरों को सदा मान देने के लिए तत्पर न रहें, और स्वतः के लिए हम मान की अपेक्षा करना हम बंद कर दें, हम करते रहें, तब तक भगवान की भक्ति या सदा हरि कीर्तन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति के भक्तों के गुण जो होने चाहिए, इनका उल्लेख भी यहां पर नाग पत्नियां कर रही हैं। तो नाग पत्नियों के मन में आश्चर्य यह है कि सांप का शरीर पाप करने की वजह से मिलता है, और भगवान की कृपा केवल भक्तों की मिलती है जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, तो ये कुछ एक विरोधाभास सा लग रहा है। ये कैसे संभव है कि आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए ढेर सारे पुण्य किए होने चाहिए, और पापी तो दूर ही रहता है आपके चरण कमलों से, लेकिन ये कैसे हो गया कि आपके चरण कमल उसके फणों के ऊपर आए? और वैसे भी पुण्य की बात तो दूर है, लेकिन कोई साधारण पुण्य करने से भी आपके चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए असाधारण पुण्य चाहिए, भक्ति की सुकृति चाहिए। तो नाग पत्नियां थोड़े बहुत भ्रांति में पड़ गए हैं। तो आगे नाग पत्नियां और सुंदर प्रार्थना करने वाले हैं जो यहां पे है। 36वां श्लोक दशम स्कंद के 16वें अध्याय में, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांशया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। उपाद द्वारा, हे प्रभु, हम नहीं जानती कि इस कालीय नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त किया है। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। कस्य अनुभावः, अस्य इस सांप ने, इस कालिया ने, हमारे पति ने कैसे कैसे कार्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप उसे ये मिल रहा है, हम नहीं जानते, न विद्महे। हमारे पति ने पिछले जन्मों में क्या क्या किया होगा हम नहीं जानते, जिसकी वजह से उनको ये अधिकार मिला। अधिकार है, कौन सा अधिकार, कौन सी योग्यता? तव अंग्रि रेणु स्पर्श, आपके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श उसके सर पे हुआ, तो ये अधिकार कौन से कार्यों से उसे पिछले जन्मों में हुआ होगा न विद्महे, हम नहीं जानते हैं। और ये अधिकार को प्राप्त करना इतना कठिन है, इतना दुर्लभ है कि स्वयं ललना श्री मतलब सर्वश्रेष्ठ स्त्री लक्ष्मी जी, उन्होंने यद वांछया, ये वांछा रख के, ये इच्छा रख के क्या किया था, आचरत तपो। बहुत तपस्या की थी लक्ष्मी देवी ने। कैसी तपस्या? सुचिरम लंबे समय तक दृढ़ व्रता, बहुत कड़क व्रत भी उन्होंने धारण किए और विहाय कामान सारे अन्य इच्छाओं को त्याग कर लंबे समय तक दृढ़ता से अनेक व्रतों का पालन करते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों के धूलि का स्पर्श करने के लिए ये सब लक्ष्मी देवी ने किया। और लक्ष्मी देवी साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं विष्णु के पत्नी है, फिर भी उनको नहीं मिला। लेकिन इतना सब हमारे कालिये को मिला, पति को मिला, जिनको सांप का शरीर है, जो कि इतना पाप करने से मिलता है, तो ये हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, ये सब कैसे हुआ, इसका क्या कारण है। वास्तव में लक्ष्मी जी वैकुंठ पति की पत्नी है, श्री नारायण की पत्नी। और जब उन्होंने रासलीला को देखा वृंदावन में, तो उनके मन में ये लालसा हुई कि मुझे भी रासलीला में गोपियों की तरह मुझे आनंद लेना है, श्री कृष्ण की सेवा करनी है। तो जब वो रास मंडल में आई तो उस समय गोपियां वहां खड़े थे जो चौकीदारी कर रहे थे, जिनकी सेवा थी। उन्होंने कहा यहां आप प्रवेश नहीं कर सकते। शिवजी को भी गोपियों ने रोका था। और जब शिवजी आए थे, सारे बड़े बड़े देवता भी हैं, उनको भी लालसा होती है रासलीला देखकर। जब शिवजी आए थे तो गोपियों ने कहा था कि आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते। तो शिवजी ने कहा अरे मैं तो वैष्णव हूं, भागवत में मेरी प्रशंसा की है, उन्होंने तो कहा नहीं, तो हम कह रहे हैं। लेकिन अरे सब मैं वैष्णव हूं तो मैं क्यों नहीं जा सकता रासलीला में। तो गोपियों ने कहा नहीं, आपकी पुरुषत्व की भावना जब तक आप त्यागोगे नहीं तब तक आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि रासलीला में एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। और वास्तव में सच्ची बात है, जीव को ही प्रकृति बताया गया है। अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि ने पराम जीव भूत महाबाहो येदम धारयते जगत। गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो अन्य प्रकृति है, जड़ प्रकृति के अलावा एक अन्य प्रकृति है जो कि जीव भूत है, जीवात्माएं, जो कि भौतिक सृष्टि को धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से जीव प्रकृति है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, पुरुष पुलिंग है। तो पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है और अन्य सारे प्राणियां, भले वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, वो वास्तव में स्त्रीलिंग है, प्रकृति है, अर्थात पुरुष द्वारा भोग्य वस्तु है। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति दोनों भोग्य हैं और भोगता है अकेले श्री कृष्ण। तो जब तक हम ये भोगने की प्रवृत्ति को त्यागते नहीं हैं, तब तक हम वास्तव में श्री कृष्ण के शरण में नहीं जा सकते हैं। तो गोपियों ने कहा यह पुरुषत्व की भावना को त्यागना होगा आपको। देखिए आप सोचते हो कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, यह भी एक शारीरिक भावना है, इसलिए हम लोग मूछें निकाल देते हैं। मूछ रखने से फिर करने की इच्छा हो जाती कि हम पुरुष हैं, पुरुषत्व के बारे में शारीरिक भावना में रह जाते हैं। हाँ, जब तक पुरुष शरीर है, स्त्री शरीर है, उस शरीर के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, इसलिए माताएं अलग बैठती हैं, प्रभु अलग बैठते हैं, तो विभाजन तो करना है। लेकिन फिर भी अंतःकरण में हमें समझ लेना चाहिए कि हम तो आत्मा है। सामाजिक दृष्टि से एक संतुलित वातावरण बनाए रखने के लिए और हमारी आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए, शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें भेदभाव करना चाहिए। लेकिन परंतु हृदय में हमें जानना चाहिए कि हम वास्तव में पुरुष नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, और नहीं हम स्त्री हैं, हम केवल आत्मा हैं। तो शिवजी को भी मना कर दिया था उन्होंने। तो शिवजी ने कहा ठीक है, मैं भी गोपी का स्वरूप धारण करता हूं। फिर शिवजी ने गोपी का रूप धारण किया और उनका नाम हुआ गोपीश्वर। और आज भी रास मंडल के स्थली पर सेवा कुंज के पास में गोपेश्वर महादेव है, जहां भगवान शिवजी ने गोपी का रूप धारण किया है और शिवजी वहां रसस्थली की रक्षा करते हैं। केवल वो व्यक्ति जिन्होंने वो जो कि बिल्कुल शुद्ध है, जिसने पुरुषत्व की भावना को त्याग दिया है, वही मात्र यहां प्रवेश कर सकता है। तो लक्ष्मी देवी आई, लक्ष्मी देवी को भी उसी तरह से रोक दिया कि आपको, लक्ष्मी देवी ने कहा मैं तो स्त्री ही हूं, आपने शिव जी को रोका था कि आप पुरुष हैं, मैं तो स्त्री हूं। तो गोपियों ने समझाया पुरुषत्व की भावना स्त्री योनि में भी हो सकती है। आप सोचते हैं कि आप रानी हैं, महारानी, वैकुंठ की महारानी, आपको वैकुंठ की पद, महारानी के पद को त्यागना होगा। यहां रासलीला में केवल साधारण गोपी जा सकते हैं, रानी महारानी के लिए स्थान नहीं। यहां पर महारानी है तो हमारी राधा रानी है, राधा रानी की जय, महारानी की जय। तो इसलिए अगर आपको प्रवेश करना है तो रानी के पद को त्याग दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, रिजिग्नेशन दे दीजिए। लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं कर पाई, इस्तीफा नहीं दे पाई। पद, ये पद जो है इसके प्रति आसक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, लक्ष्मी देवी फिर वांछित, फिर वो रहेगी, वो नहीं जा पाई रासलीला में। फिर आखिर में उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कोई ना कोई, किसी न किसी तरह से आपके लीला में मुझे शामिल कीजिए। तो फिर कृष्ण ने कहा ठीक है, और लक्ष्मी देवी ने कहा मैं आपके वक्षस्थल में एक सुवर्ण रेखा के रूप में, श्रीवत्स के रूप में वहां निवास करूंगी। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर वो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में रासलीला में भाग नहीं ले पाई। तो इस प्रकार से नाग पत्नियां कह रही हैं कि स्वयं लक्ष्मी देवी ने बहुत लंबे लंबे समय से तपस्या की, कड़ी तपस्या की, उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला आपके चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए, लेकिन हमारे पति जो कि सांप के शरीर में है, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत पाप किए थे, उसको ये अधिकार कैसे मिला, न विद्महे, हम नहीं जान सकते हैं इसको। और अभी नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूली की प्रशंसा करने वाले हैं कि ये चरण कमलों की धूली प्राप्त करने से क्या मिल जाता है। न नाक पृष्ठम न च सर्वभौमम न पारमेश्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्नाः, यत्पाद रज प्रपन्नाः, जिसको आपके पाद रज मिल जाता है प्रपन्नाः, ऐसे व्यक्ति न वांछति, इच्छा नहीं करता है इन चीजों के लिए। किन चीजों के लिए? नाक पृष्ठम, स्वर्गलोक के लिए। सर्वभौमाम मतलब सबसे ऊंचे से ऊंचे राजपद के लिए। पारमेष्ठ्यम ब्रह्मा जी के पद के लिए। ब्रह्मा जी का और एक नाम है परमेष्ठी, इसलिए पारमेष्ठी मतलब ब्रह्मा जी के पद को। न रसाधिपत्यम, रस अधिपत्यम मतलब सारे पृथ्वी लोक के ऊपर राज करना, पृथ्वी का और एक नाम है रस, तो सारे पृथ्वी लोक का राजपद। योग सिद्धि, सारे योग अभ्यास की सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, इसित्वा, प्राकाम्य। अपुनर्भवम वा, जन्म मृत्यु के से भी छुटकारा, मतलब मोक्ष भी नहीं जानते हैं। तो नाग पत्नियां बोल रही हैं कि जिस व्यक्ति ने आपके चरणों के रज के एक कण को भी प्राप्त किया है, उसके लिए ये सारी चीजें तुच्छ हैं, तृण के भी बराबर नहीं है। कौन सी चीजें? स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मांड के राजपद की प्राप्ति, ये पृथ्वी लोक के राज की प्राप्ति, यहां तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी उनके लिए तुच्छ है। बिल्वा मंगल ठाकुर ने प्रार्थना की है मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा, भक्ति स्वया स्थिरतरः, जब मैं आपके भक्ति में स्थिर रह जाता हूं तो उस समय मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, मुक्ति ही मूर्तिमान मुक्ति देवी मुकुलितांजलि, प्रांजलि के मुद्रा में हाथ जोड़कर सेवते अस्मान, मेरे सामने हाजिर होती हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकें, हम आपके शरण में आए हैं, पूरी तरह से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में स्थित है, मुक्ति देवी स्वयं उसके पास हाथ जोड़कर कहती है, मुझे स्वीकार कीजिए, मतलब मैं आपको मुक्ति देना चाहती हूं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा देना चाहती हूं। और उनके साथ में कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम गतयः वो भी आते हैं, समय प्रतीक्षा, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं हाथ जोड़कर, हमें स्वीकार कीजिए, हम आपको सारे ऐश्वर्य दें। सब कुछ दे देंगे, लेकिन भक्त को समय नहीं है इनके लिए, ना मुक्ति देवी के लिए टाइम है और न ही धर्म के लिए, अर्थ के, धर्म मतलब ये कर्मकांड की बात चल रही है, भक्ति नहीं, न ही ये कर्मकांड के लिए और न ही हमें इंद्र तृप्ति के लिए, न भौतिक ऐश्वर्य के लिए समय नहीं, इनको बिल्कुल तुच्छ समझते हैं भक्त। तो इस प्रकार से नाग पत्नियां बोल रही हैं कि आपके चरण धूलि का ये महात्म्य है, ये गुण है आपके चरण धूलि में। तद एष नाथाप दुरापम अन्यई, हे नाथ, इसके लिए इसने, एष है ये कालिया ने, आप ये प्राप्त किया है दुराप अन्य, जो कि अन्यों के लिए प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। तमोजनि क्रोध वशोपि अहिषः, तो हालांकि ये इतना क्रोधी है, द्वेषी है, इतना अयोग्य हर दृष्टि से है, लेकिन फिर भी इसने ये वस्तु को त्याग, इस वस्तु को प्राप्त किया है जो अन्यों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। और वो क्या वस्तु है? वो है आपके चरणों की धूलि। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि ठीक है, काले जैसे व्यक्ति को भी भगवान के चरणों की धूलि प्राप्त हो गई, लेकिन श्री कृष्ण कम से कम तो उस समय प्रकट थे, लीला कर रहे थे, लेकिन यहां तो भगवान श्री कृष्ण लीला नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम कैसे भगवान के चरणों की धूलि प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कोई चिंता नहीं, भगवान के भक्त तो है, भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव हैं, जिनकी चरण धूलि में वही शक्ति है, वही बल है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ए तीन महाबल। कहते हैं कि भक्त पदे धूलि, भक्त के चरण धूलि, भक्त पद जल, भक्तों के चरणों को धोया हुआ तो जल होता है, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों ने जो ग्रहण किया होता है प्रसाद, उसका जो अवशेष रह जाता है, ये तीन महाबलशाली हैं, बलवान हैं। जो भगवत धाम में शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, इन तीनों का वो अच्छी तरह से सेवन करेंगे। अभी आपको गुह्य बात बता दी है, गुह्य तमम, गुह्य तरह, बहुत ही गुह्य गुह्य बात, जो कि साधारण पब्लिक में नहीं बता सकते, लेकिन आप सब तो पब्लिक नहीं कहलाते, आप सब तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए हैं, कोई जनता पब्लिक ऐसे आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते आपके साथ, इसलिए गुही बातें यहां बोल सकते हैं। मही यसाम पाद रजोभिषेकम, प्रहलाद महाराज ने भी बताया था, और राजा ऋषभदेव ने भी कहा ये बात, यही बात है कि जब हम मही यसाम, मतलब जो महान भक्त हैं, उनके रज चरण धूलि से हम अभिषेक करते हैं, तो फिर हमें सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि भगवान की चरण धूलि हमें कैसे मिल सकती है, और एक तरह से भी मिल सकती है। जब हम ब्रज में जाते हैं तो हमें ब्रज के धूलि में लौटना चाहिए, रमण रेती में जहां श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की, उनके चरणों से उस धूलि को सुशोभित किया। तो ऐसे एक प्रथा है कि जब रमण रेती में जाते हैं तो भक्त वहां लौटते हैं, रज तो वही है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से एक बार किसी चीज का स्पर्श होता है तो हमेशा के लिए पावन हो जाता है, जैसे कि गंगा जी का जल है, एक बार केवल चंद क्षणों के लिए वामन देव के चरणों का स्पर्श किया, गंगा जी में वो शुद्धता वो शक्ति आ गई। उसी प्रकार से वृंदावन का रज उतनी तरह से उसी तरह से शक्तिशाली है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के चरण धूलि को भी इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आदि आश्रय हैं, किंतु आप उनके सृजन के पूर्व से विद्यमान हैं। यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कार्य कारण से परे हैं। इस प्रकार से नाग पत्नियां प्रार्थना कर रहे हैं और आगे चल के भी उनकी प्रार्थना जारी है। हमारे पास समय नहीं है कि हम हर एक श्लोक की चर्चा गहराई में करें, लेकिन सुंदर प्रार्थना भक्ति भाव से करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और इस प्रार्थना में भी गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, जिनको पढ़ के हम लाभान्वित हो सकते हैं। और फिर प्रार्थना के अंत में फिर वो कहने लगी, अपराधस्य कृत भर्त्रा षोडव्यः स्वप्रजा कृतः क्षन्तुम् अर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वाम् अजानतः। हे प्रभु, अपराध सकृत भर्त्रा षोडव्य सप्रजा कृतः। भर्त्रा मतलब एक प्रभु, कोई स्वामी मालिक, अगर उसके षोडव्य उसे सहन करना चाहिए, सकृत कम से कम एक बार अपराध है, अगर उसका कोई स्वप्रजा, उसका कोई बच्चा हो, प्रजा हो, उसका सेवक हो, उसने कोई अपराध किया हो, तो षोडव्य उसे सहन करना चाहिए, उसे क्षमा करना चाहिए, सकृत कम से कम एक बार। तो समझ रहे ना कि नागपत्नी क्या बोलने जा रही हैं? बोलने जा रही हैं कि हर एक प्रभु को चाहिए कि सेवक से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, सहन करना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए। क्षण तुम अर्हसी शांतात्मन मूढ़स्य तम अजानतः। और हमारे पति तो मूढ़ थे, मूर्ख थे, अज्ञानी थे, तमोगुण में थे, और उन्होंने बहुत अपराध किए आपके चरण कमलों में, तो कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। अब इस एक बार ही आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं, अपने पति को मूर्ख बता रहे हैं, मतलब इस दृष्टि में तो कम से कम पत्नियों को उनके पद चिन्हों में नहीं चलना चाहिए, घर में नहीं तो उत्पात हो जाएगा। लेकिन फिर भी कालिया वास्तव में तमगुण में था, इसलिए पत्नियां ऐसे कह रही हैं। और फिर नाग पत्नी कहने लगी कि हे प्रभु, संत पुरुषों के लिए यह उचित है, यह शोभा देता है कि हम जैसे स्त्रियों के ऊपर वो कृपा करें। ये जो सांप है, जो कि हमारे पति हैं, हमारे प्राण धन है, अभी अभी प्राण त्यागने की अवस्था में है, तो इसी प्रकार से आप जैसे अन्यों पर कृपा करते हैं, इसके ऊपर भी आप कृपा करें। विधेहि ते किंकरीणाम् अनुष्ठेयम् तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुष्ठितान्वै मुच्यते सर्वतो भयात्। अभी कृपा करके हमें ये बताइए, हम जो कि आपके किंकरी हैं, कि हम आपके लिए क्या करें। आपकी आज्ञा का पालन जो भी श्रद्धा पूर्वक करता है, अवश्य वो सारे भय से मुक्त हो जाता है। अब नाग पत्नियों का शरण परिपूर्ण हो गया है, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ चुके हैं नागपत्नियां। और फिर इस प्रकार से भगवान ने इनकी प्रार्थना अच्छी तरह से सुनी और भगवान ने कैसे इसका प्रतिसार किया यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। मूर्छितम भग्न शिरसाम विसर्ज अंघ्री कुट्टनैहि। फिर उन्होंने कालिया को छोड़ दिया, विससर्ज जाने दे दिया, क्योंकि उसके पत्नियां इतने बड़े भक्त थी। भक्ति जब कोई भी एक व्यक्ति परिवार में करता है तो उसका फल सबको मिल जाता है। पत्नियों के भक्ति के बल पर कालिये को भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा कर दी, उसे जाने दिया, मुक्त कर दिया। जैसे ही नाग पत्नियों की प्रार्थना समाप्त हुई, भगवान श्री कृष्ण जो कि कालिये के फणों पर स्थित थे, तुरंत कूदकर फिर से जल में आ गए उनके सामने और फिर कालिये को मुक्त कर दिया। और कालिये की क्या दशा थी? मूर्छितम, प्राय बेहोश हो चुका था, और भग्न शिरसम, शिर उसके सिर प्राय टूट चुके थे। क्यों टूट चुके थे? अंग्री कुट्ट नहीं ही, भगवान के चरण कमलों के प्रहार से प्राय सब कुछ खत्म हो चुका था, प्राण त्यागने की तैयारी में थे। और फिर छोड़कर काली की क्या दशा हुई? कालिये धीरे 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 से प्राण कालिये के शरीर में आए, उसकी इंद्रियां फिर से धीरे धीरे से जाग गईं और बहुत जोर से धीरे धीरे से सांस लेते हुए ये जो कालिया है उसने भगवान को प्रार्थना अर्पण करना शुरू किया। सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि कालिया की ये बेचारे की ये दुर्दशा थी, इतनी पीड़ा में था कालिया, इतना दर्द हो रहा था शरीर में कि वो बुद्धि ये इतनी काम नहीं कर रही थी कि वो अच्छे प्रार्थना अर्पण करे। लेकिन फिर भी उसके पत्नियों ने जो प्रार्थना अर्पण किए थे उसको सुना था कालिया ने, तो उस प्रार्थना के आधार पर कुछ दो शब्द कालिया बोलने जा रहा था। कालिया उवाच, कालिया ने क्या कहा? वयम खला सहोपत्या तामसा देघ मन्यवः स्वभावो दुष्ट जो नाथ लोकानाम यद असत्ग्रह। वयम, हे प्रभु, मैं तो खला, मेरे मन में तो ईर्ष्या थी, मैं तो ईर्ष्याले व्यक्ति हूं। कब से? सह उत्पत्या मतलब जन्म से, जब से मैं उत्पन्न हुआ तब से मैं द्वेषी हूं। तामसा, मैं तमोगुण में हूं। दीर्घ मन्यव, हमेशा क्रोधित अवस्था में रहता हूं, और इसलिए मेरा स्वभाव है दुष्ट जो नाथ लोकानाम यत असद्ग्रहा। और ऐसे स्वभाव को त्यागना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति वो भी अपने स्वभाव को त्याग सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। जो भी मुझे आप दंड दें, कृपा करें, मैं उसे स्वीकार करूंगा बड़े खुशी से, क्योंकि मैं जानता हूं कि दंड हो या प्रेम हो, दोनों ही आपकी कृपा हैं। फिर भगवान ने सुना, और सुनकर भगवान क्या बोले? इत्यकर्णया वचः प्राह भगवान कार्य मानुषः नात्रस्थेयं त्वया सर्प समुद्रम याहि माचिरम स्वज्ञात अपत्य दाराढ्य गोनृभि भुज्यते नदी। इति अकर्ण्य, ये जो बोल रहे थे कालिया उसको सुना भगवान ने। वचः प्राह, फिर भगवान वचन बोलने लगे। वो भगवान जो कि कार्य मानुषः, एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य कर रहे थे, और भगवान क्या बोले? न अत्रस्थेयम् त्वया सर्प, हे सर्प, हे साप, हे कालिया, न अत्र स्थेयम् त्वया, इस स्थान में अब नहीं रहो। फिर क्या करो? समुद्रम याही, समुद्र में जाओ। कब जाना? आराम से जाना, नहीं माचरम, देर नहीं करना, इसी क्षण यहां से चले जाना, और अकेले जाना नहीं, स्वजन अपत्य दार आढ्यो इन सबको साथ में लेकर जाना, अपने रिश्तेदार बाल बच्चे समाज सबको साथ में लेकर जाना, खाली कर दो जगह, तुरंत चले जाओ यहां से। और गोन रभीर भुज्यते नदी, ये नदी का जल भोग्य है किसके लिए, गो नृभि गायों के लिए और यहां के मनुष्यों के लिए, उनका अधिकार है यहां भोग करना, यमुना जी का जल का पान करना, लेकिन तुम इसको भोग रहे हो, इसलिए तुरंत यहां से दफा हो जाओ, चले जाओ और वापस नहीं आना। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो। और श्रोता गणों को भी यह आशीर्वाद उन्होंने दिया, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे इस आदेश को श्रवण करता है, जो आदेश मैंने तुम्हें दिया है वृंदावन को छोड़ के जाने के लिए, और इस आदेश को वो दोहराता है सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, तो क्या होगा, वो आपसे कभी भयभीत नहीं होगा, अर्थात सांपों का सर्पों का भय उसके हृदय से चला जाएगा। तो अभी आप सब सर्पों के भय से मुक्त हो चुके हैं, सांप से डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। और आगे भगवान बताते हैं कि अगर इस स्थान में जहां मैंने ये लीला की है, यहां पर अगर कोई व्यक्ति स्नान करेगा और इस जल को अपने पितरों को अन्यों को अर्पण करेगा और यहां पे उपवास करेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरा स्मरण करेगा, तो अवश्य सारे पापों से वो मुक्त हो जाएगा। तो आचार्य समझाते हैं कि भगवान ने ये बात इसलिए बताई कि अगर कालिया बोल भी दे, प्रार्थना करे, रहने दीजिए मुझे यहां, क्या बात है, अभी मैं अच्छा हो गया हूं, वैष्णव हो गया हूं, तो ताकि ऐसा काले न कहे, भगवान ने कह दिया कि अभी ये जगह तीर्थ स्थान हो गया है, सब लोग यहां आके अभी स्नान करने वाले हैं, यहां पे धार्मिक क्रियाएं करने वाले हैं, इसलिए सांपों के लिए यहां कोई स्थान नहीं। तो ताकि काले ऐसे अनुरोध न करे, पहले से ही भगवान ने बोल डाला कि यहां से जाओ, अब वापस नहीं आ सकते, तुम रमणिक द्वीप छोड़कर आए थे गरुड़ जी के भय से, और तुमने ये तालाब का आश्रय लिया था, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे सर के ऊपर मेरे पदचिन्ह है, तुम्हारा सर मेरे पदचिन्हों से सुशोभित है, इसलिए गरुड़ जी इसको देखकर तुमसे दूर रहेंगे, गरुड़ जी समझ जाएंगे तुम वैष्णव बन गए हो, हालांकि तुम सांप हो फिर भी तुम वैष्णव हो, इसलिए वो तुम्हें अभी खाएगा नहीं, इसलिए तुम डरो नहीं, जाओ। और इस प्रकार से कालिया ने अपने सगे संबंधियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण के गुणगान किया और फिर उनको नाना प्रकार के सुंदर सुंदर चीजें अर्पण किए, पूजा की उनके। यहां आचार्य समझाते हैं, खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को गरुड़ से बचाया और कालिया को ब्रजवासियों के प्रति जो उन्होंने अपराध किए थे उससे भी बचाया, और ये केवल इसलिए कि कालिया के पत्नियां इतने अच्छे भक्त थे। तो देखिए कितना लाभ होता है, घर में एक भी व्यक्ति भक्त हो तो कितना उद्धार हो जाता है, सबकी भलाई इसमें हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को बचाया और वृंदावन के निवासियों को भी बचाया। नाना प्रकार की चीजें जब कालिया ने और उनके रानियों ने अर्पण किए तो उनमें से कौस्तुभ मणि भी था, तो भगवान को इस तरह उनका प्रिय कौस्तुभ मणि मिल गया। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कौस्तुभ मणि, ये जो हमेशा सब भगवान का रत्न है, ये काली के पास कैसे आ गया? तो आचार्य समझाते हैं कि कृष्ण भगवान काली को कुछ सेवा में लगाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कौस्तुभ मणि समुद्र में या यमुना के अंदर जाकर अपनी शक्ति से ही जो रत्नों का आकार काली के पास था उसमें डाल दिया। और जब काली की रानियां और काली खुद भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे और नाना प्रकार की चीजें अर्पण कर रहे थे, उनको रत्न भी अर्पण किए। तो उन्होंने सोचा ये रत्न भी अपने रत्नों में से है। साहब उनके पास रत्न मणियां बहुत थी, कालिया के हर एक फण पे एक बहुत मूल्यवान मणि था जिसके प्रकाश से वो सारे अंधकार को दूर कर सकते थे महातल में। तो मणियां रत्न बहुत सारे थे, ढेर सारे थे। तो उनको याद नहीं था कि कौन से मणि अपनी है, कौन सी आई नहीं आई। तो अपना ही समझकर वो मणि भी उन्होंने कृष्ण को अर्पण कर दी और फिर कृष्ण ने ये कौस्तुभ मणि अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। इस प्रकार से कालिया को भगवान ने ये सेवा में भी लगा दिया। तो भगवान कितने कृपालु हैं कि न जानते हुए भी गरुड़ से कालिया से उन्होंने ये सेवा ले ली। यह है भगवान की कृपा। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर असीम कृपा काली के ऊपर की। यहां पर तात्पर्य यह भी बताया जाता है कि कृष्ण भगवान का वर्णन गरुड़ ध्वज शब्द से किया जाता है, मतलब जिनके रथ के ध्वज के ऊपर गरुड़ जी का चिन्ह है। ऐसा क्यों? क्योंकि गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं और काली भी वैष्णव बनने के बाद भगवान का वाहन बनना चाहता था। वैसे गरुड़ और कालिये ये भाई भाई थे। कैसे? क्योंकि कश्यप मुनि की चार रानियां थीं। एक रानी का नाम था विनता, विनता या तो सुपर्णा, दक्षिण कन्नड़ में ये नदी है, गरुड़ जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सुपर्णा नदी वहां है मैंगलोर में। आप जानते हैं दक्षिण कन्नड़ में से मैंगलोर कोई गए हैं ना, उसके पास में सुपर्णा नदी है। उनकी और एक पत्नी थी जिनका नाम था पतंगी, तीसरे पत्नी का नाम था यामिनी और चौथे पत्नी का नाम था कद्रु। तो कद्रु से सारे सर्पों ने जन्म लिया और विनता से गरुड़ और अरुण। अरुण सूर्यदेव के सारथी हैं और गरुड़ जी भगवान के वाहन। और गरुड़ जी का जो आहार है, भोजन, वो सर्प है और वो उनके भाई हुए, उनके विमाता के बच्चे। तो पतंगी से सारे पक्षियां आए और यामिनी से सारे शलभ, शलभ यानी लोकस्ट, वो जो कीड़े जैसे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि प्रजापतियों से जो कि देव शरीर में थे, उनसे सारे 84 लाख योनियां उत्पन्न हो गई। अब यहां हम देखते हैं कि मनुष्य पुरुष स्त्री से उसी जाति का, उसी योनि का कोई बच्चा हो सकता है। हम ऐसा कभी देखने में नहीं आता कि किसी मैटरनिटी वार्ड में, किसी हॉस्पिटल में किसी स्त्री को अचानक कोई अलग ही योनि का बच्चा हो गया, ऐसे नहीं दिखने में आता। लेकिन ये जो देवलोक के निवासी थे, जो प्रजापति प्रजापालन उत्पन्न के कार्य में लगे हुए थे, उनके शरीर से अलग अलग योनियां निकल सकती थी। वैज्ञानिक दृष्टि से जो वैज्ञानिक है उनको समझा सकते हैं कि उनका डीएनए, आरएनए वगैरह उनके अंदर कैसे भगवान ने योजना की है, व्यवस्था की है, जिससे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्राणियां निकल सकती थी और इससे सारे सृष्टि के 84 लाख योनियां बन गई। तो इतने अच्छे ढंग से भागवत में ये बतलाया जा रहा है कि 84 लाख योनियां कैसे उत्पन्न हुई यहां पर। लेकिन करीब 150 साल 200 साल पहले एक महाशय थे जिन्होंने एक ऐसा मनगढ़ंत ढंग से एक तर्क किया कि मनुष्य बंदर से आया है। उनका नाम था महाशय का डार्विन साहब। तो डार्विन जी ने ऐसे सब गलत धारणाएं प्रस्तुत किए जो कि आज सारे स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवत का विज्ञान कि कैसे सारे योनियां उत्पन्न हुए, वो किसी को नहीं सिखाया जा रहा है। खैर, तो इस प्रकार से गरुड़ जी और काली ये दोनों वास्तव में भाई थे और कालिया भी बताना चाहता था कि मैं भी आपका वाहन होना चाहता हूं। और पुराणों में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बार बार होती रहती हैं साइकिल में। अब इस बार जब भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए, अभी ब्रह्मा जी के अगले दिवस में पुनः आएंगे, उसके बाद में और पुनः आएंगे, ऐसे ये चलता चलता रहता है निरंतर। और हर एक बार जब यहां भगवान आते हैं तो ये सारे अलग अलग असुर रहते हैं, हर बार कालिया दमन लीला होती है, हर बार पूतना का वध होता है, हर बार अलग अलग असुरों का वध होता है, हर बार गौचारण लीला होती है, हर बार रास लीला होती है। लेकिन कभी कभी इन लीलाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। और कभी कभी जब कंस कृष्ण को मथुरा बुलाते हैं, ये भी लीला होता है, फिर वो कुश्ती करके उनको मार डालते हैं वगैरह। तो इस बार उन्होंने अक्रूर को भेजा रथ से उनको ले आने के लिए। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो कालिया के ऊपर सवार होकर जाते हैं, तो कालिया उनका वाहन बन जाता है। क्योंकि कालिया अब तक भक्त हो जाता है ना, भक्त होने के बाद भगवान का वाहन बन जाता है, क्योंकि काली की इच्छा थी कि गरुड़ की तरह ही मैं भी एक वाहन बन जाऊं भगवान का। तो इस प्रकार से जब कालिया और उनके पत्नियों ने अच्छी तरह से पूजा इत्यादि की भगवान श्री कृष्ण की, तो परीक्षित महाराज बहुत आतुरता से ये कथा सुन रहे थे। और उन्होंने पूछा कि कालिया ने रमणीक द्वीप सबसे पहले छोड़ा क्यों था, यहां छोड़कर फिर यमुना की नदी में क्यों आया कालिया, और गरुड़ केवल कालिया के प्रति इतने क्रोधित क्यों हुए, इसके पीछे इतिहास क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी कथा बताने लगे, कहने लगे कि बहुत साल पहले की बात है, रमणीक द्वीप में गरुड़ जी वहां आया करते थे। वैसे गरुड़ उनका भोजन ही सांप है, तो वो सांपों को खाया करते थे, तो इस वजह से सांपों के समाज में उत्पात हो गया और सभी लोग सोचने लगे कि इसके लिए क्या किया जाए। फिर उन्होंने उनके जो राजा थे वासुकी, वासुकी का नाम सुना है ना आपने, समुद्र मंथन में वो कौन बने थे, मंथन के लिए रस्सी बने थे। तो वासुकी जो कि सर्पों के राजा हैं, वो ब्रह्मा जी के पास गए, त्राहे त्राहे बचाइए, अभी गरुड़ जी ने हमारा तो जीना हराम कर दिया है, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक समझौता कर लो ब्रह्मा जी से। क्या समझौता? समझौता ये है कि हर महीने में एक दिन में आप एक कोई चीज, एक सांप उनको अर्पण करोगे, तो आप में से एक एक को महीने में एक बार यहां आना पड़ेगा और आप भक्ष होंगे, आप उनके लिए भोजन हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कम से कम कुछ नियमित तौर से तो हो रहा है, कम से कम पता तो चलेगा कि किसकी मृत्यु होनी है। ऐसा नहीं कि बस हर दिन हम तनाव में रहें कि आज किसकी बारी है और गरुड़ किसको आके खा जाएंगे आज। गरुड़ तो इतने शक्तिशाली है, कोई भी सांप उनका सामना नहीं कर सकता था। तो ये समझौता अच्छे ढंग से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहां कालिया नाग था जो कि बहुत द्वेषी, क्रोधी और अहंकारी था। उसने सोचा कि मैं क्यों इस गरुड़ जी के लिए सारा भोजन दे दूं, और खुद कालिया जाकर उसे खा लेता था। जब गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसे कर रहा है, तो बड़े तेज गति से कालिया की ओर गरुड़ जी आए और आक्रमण किया। और जैसे ही आक्रमण किया तो कालिया ने भी अपने फणों से डसने का प्रयास किया गरुड़ जी को, लेकिन गरुड़ जी तो इतने शक्तिशाली हैं तो उनके ऊपर ये विष का प्रभाव बिल्कुल हुआ नहीं। और ये जब काली को पता चला कि अब मैं गरुड़ का सामना नहीं कर सकता, और गरुड़ जी ने अपने पंख से ऐसे प्रहार किए काली के ऊपर कि काली के सारे सर चकरा गए, और फिर वहां से भाग गया कालिया तुरंत और आकर सीधे यमुना जी में इस तालाब में आश्रय लिया। तो केवल यहीं पर क्यों आया कालिया, इसके पीछे भी एक इतिहास है। जिस प्रकार गरुड़ जी रमणीक द्वीप में मछलियों को खाने के लिए जाते थे, पृथ्वी भर में घूमते थे, ब्रह्मांड भर में घूमते हैं गरुड़ जी, तो वो यमुना नदी में भी आते थे। यमुना के नदी में जल के भीतर एक मुनि थे जो कि कड़ी तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था, बता सकते हैं कोई, सौभरी मुनि। सौभरी मुनि जल के भीतर में जाकर कई सालों तक तपस्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जमीन पर तपस्या करने से इतने सारे चीजें हो रही हैं, बाहर कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ध्यान भंग होने की संभावना थी। इसलिए उन्होंने सोचा मैं जल के भीतर जाऊंगा तो वहां मेरा ध्यान भंग करने के लिए कोई नहीं आएगा, तो मैं आराम से ध्यान कर पाऊंगा। और उस समय वहां जल के भीतर होते होते मछलियों के प्रति उनका थोड़ा प्रेम हो गया, ये मछलियों के समाज से, और ये गरुड़ आकर मछलियां खाया करते थे। तो उस समय सौबरी मुनि ने कृपा की इन मछलियों के ऊपर, और उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया कि आज से यहां मत आना आप, क्योंकि ये जगह आपके लिए नहीं है, इन मछलियों को शांति से रहने दीजिए। तो आचार्य समझाते हैं कि सौबर मुनि की यह पहली गलती हुई। सौबरी मुनि केवल एक ऋषि मुनि थे, महान भक्त नहीं थे भगवान के, केवल तपस्वी थे, योगी थे, लेकिन भक्त नहीं। और गरुड़ जी तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, स्वयं भगवान के वाहन हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सौबर मुनि की पहली गलती ये थी कि उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया। आदेश केवल वही दे सकता है जो कि श्रेष्ठ पद पे होता है, लेकिन सौबरी मुनि श्रेष्ठ पद में नहीं थे गरुड़ जी की तुलना में। उनको गरुड़ जैसे भगवान के नित्य पार्षद भक्त को आदेश नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे दिया, तो पहली गलती हो गई। लेकिन गरुड़ क्या करते, उनके लिए मछली ही तो आहार है, इसलिए दोबारा आकर गरुड़ जी ने मछलियों के राजा को उठाकर खा लिया, और फिर मछलियों के समाज में हाहाकार मच गया, और वहां सारे दुखी होकर वो सब सौबरी मुनि के पास में आए। तो सौबरी मुनि ने कहा कि अरे मैं श्राप देता हूं, क्योंकि इस गरुड़ जी ने यहां इतना तकलीफ दिया है, इतना कष्ट दिया है इन सांपों को, और हालांकि ये भगवान का शुद्ध भक्त है, नित्य पार्षद है, वाहन है, फिर भी मैं इसे श्राप देता हूं कि अगर ये यहां पर फिर से आए इस इलाके में तो ये गिर के प्राण को त्याग देगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैंने कोई तपस्या की है तो मेरा ये वचन सत्य निकलेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो गरुड़ जी ने भी ये सुन लिया, काली को भी ये बात ज्ञात थी, गरुड़ जी ने मान ली इस बात को, क्योंकि गरुड़ जी भक्त हैं तो नम्र होते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया, और फिर वो उस स्थान में कभी भी नहीं आए। सौबर मुनि उनकी दूसरी गलती हो गई। पहली गलती थी गरुड़ जैसे भक्त को आदेश दिया, और दूसरी गलती कि उन्होंने श्राप दिया इस प्रकार से। वैसे गरुड़ जी को रोकना नहीं चाहिए था, और गरुड़ जी को डांटना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि गरुड़ जी के लिए ये सांप ही भोजन होते हैं, और इसकी वजह से ये दो बड़े वैष्णव अपराध हुए सौबर मुनि के, और इसीलिए उनका पतन हुआ। नौवें स्कंद में वर्णन आता है कि सौबर मुनि जब एक बार जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने दो मछलियों को संग करते हुए देखा, और केवल इतना ही देखकर उनके मन में काम वासना उत्पन्न हुई, और जल के बाहर आए और सीधे वहां उस प्रांत के राजा जिनका नाम था राजा मानधाता उनके पास में गए। बहुत पुरानी बात है, मतलब राजा मानधाता पुराने राजा थे। आजकल भी बंगाल में एक कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कोई चीज कहे या ऐसे कोई वस्तु का प्रयोग करे जो कि बहुत पुरानी है, मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर रेडियो है जो बहुत 50 साल पहले की है, तो ऐसे मजाक में दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे क्या राजा मानधाता के जमाने की रेडियो लेकर आए हो। मतलब राजा मानधाता इतने पुराने थे कि कहावत में भी उनका नाम आ गया है। तो ये कथा बहुत पुरानी कथा है, प्राचीन कथा। तो राजा मानधाता के पास में गए सौबर मुनि, और क्योंकि इतने लंबे समय तक जल में रहे थे तो उनकी त्वचा बिल्कुल बिल्कुल मुरझा गई थी, और बूढ़े हो गए थे, बाल नहीं थे, लंबे दाढ़ी थे, जो भी बाल थे वो सफेद हो गए थे। किसी न किसी तरह से आए और राजा मानधाता से कहने लगे मैं आपकी कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। मानधाता राजा बड़े दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे कि मेरे पुत्रियों का विवाह मैं इनसे कैसे करूं, ये तो इतने बूढ़े हैं, कुरूप हैं, और कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कहां रहेंगे, क्या करेंगे, मेरे बेटियों का कैसे देखभाल होगा। लेकिन घबरा भी गए मंधाता राजा, क्योंकि ये योगी है, कहीं शाप न दे दें। तो उन्होंने कहा चतुराई से, मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने बेटियों को स्वतंत्रता दे रखी है कि वो जिनको चाहें उनको अपना पति मान लें, तो अगर वे स्वीकार करेंगे आपको तो फिर मैं तैयार हूं। राजा तो जानते थे कि पुत्रियां कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तो जब वो गए उन पुत्रियों के पास में सौवर मुनि, तो पुत्री ने उनको देखा, इतना बूढ़ा आदमी, इतना कुरूप, उन्होंने आंख बंद कर लिए, दूसरी ओर चले गए। सौवर मुनि ने सोचा ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं कुरूप हूं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी योग शक्ति से अपने आप को बहुत सुंदर बनाया, एक नव युवक का शरीर धारण किया योग शक्ति से, और पुनः वहां पर गए, राजा मंधाता की कन्याओं से मिलने गए। उस समय क्या हुआ, सारे 50 जो उनकी कन्याएं थी सब बोलने लगे मैं इनसे विवाह करूंगी। फिर सौवरी मुनि सोचने लगे अरे किनसे विवाह करना है, 50 है, क्या करें। तो 50 के 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। अभी आप जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जब एक पति एक पत्नी होते हैं तो कितना कष्ट होता है ना। केवल एक संसार को चलाने के लिए, एक कुटुंब को चलाने के लिए कितना कष्ट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि सौवरी मुनि की 50 रानियां पत्नियां हुए तो क्या दशा उनकी हुई होगी। तो इस प्रकार से वो अपने आध्यात्मिक स्तर से उनका पतन हो गया, क्योंकि इन्होंने ये दो अपराध किए थे। आगे चल के उनको जब पता चला कि मैं क्या कर रहा था और मैं क्या हो गया, तो फिर उनके होश ठिकाने आ गए और फिर से वो अपने भजन में स्थित हो गए। तो आचार्य समझाते हैं कि उन्होंने ये दो अपराध वैष्णव गरुड़ के प्रति की थी, इसलिए उनका पतन हो गया। लेकिन क्योंकि वृंदावन की भूमि में, ब्रज भूमि में, वो यमुना जी के पावन जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, इसका फल भी उनको मिला और वह पुनः अपने आध्यात्मिक स्तर में स्थित हो गए। तो इस प्रकार से गरुड़ जी को जो शाप दिया था ये कालिय अकेले जानता था। इसे जल्दी से रमणिक द्वीप को छोड़कर गरुड़ के डर के मारे कालिया वहां पर आ गया और तब से वहां पर वो निवास करने लगा। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि इसका इतिहास क्या था। और फिर से शुकदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे कि कृष्ण भगवान जब कालिया के सामने थे और कालिया जब वहां से चला गया और कृष्ण भगवान फिर से तट पर आ गए, तो सारे ब्रजवासी जो वहां पर थे तो मानो कि ऐसा उनको पुनः प्राण आ गया, फिर से खड़े हो गए और सब खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। सबने श्री कृष्ण को आलिंगन किया, माता यशोदा आई, नंद महाराज आए, यहां तक कि बलराम ने भी कृष्ण को अपनी गोदी में रख के आलिंगन किया। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो कृष्ण जो कि उन्होंने सोचा था कि अभी हमारे हाथ से चले गए, इनकी मृत्यु निश्चित है, वो कृष्ण अभी मृत्यु के मुख से लौट कर आए हैं। तो ब्रजवासियों की खुशी की, आनंद की कोई सीमा नहीं रही। और फिर वहां जो ब्राह्मण थे वो सब नंद महाराज के पास में आए कि आपको भी उत्सव मनाना चाहिए, आपको अभी हम सबको गायों का इत्यादि दान देना चाहिए। तो नंद महाराज ने बड़े हर्ष उल्लास से ब्राह्मणों को दान दिया और फिर बड़े खुशी से सब लोग कृष्ण के को घेर कर बैठ गए। किसी को घर जाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि अभी कृष्ण प्राय उनके हाथों से चले गए थे, अभी वो कृष्ण को खोना नहीं चाहते थे। अब सोचते थे कि हम अपने अपने घर में जाएंगे, कृष्ण तो नंद महाराज के घर में जाएंगे तो फिर हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, वहीं पर यमुना जी के तट पर ही बैठ गए और वहीं पर सो गए। सारा ब्रज, वहां के सारे निवासी उस रात को यमुना जी के तट पर रहे और सारे लोग वहीं पर सोए कृष्ण को बीच में रखकर। और कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल पूरी तरह से अमृत हो गया। जैसे ही कालिय वहां से चला गया अपने साथियों के संग, भगवान की कृपा से उस तालाब का जल फिर से अमृत बन गया। लेकिन फिर भी ब्रजवासी उस पानी का पान करने के लिए डर रहे थे, सोच रहे थे कि विष से अभी न जाने क्या होता होगा, फिर विष का पान करेंगे क्या होगा। फिर बाद में भगवान ने गौओं को पानी पिलाया और सब ब्रजवासी ने देखा कि कुछ हुआ नहीं, हाँ चलो फिर सब पीने लगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह सुंदर लीला, कालिया दमन लीला संपन्न कर ली और अपने ब्रजवासी भक्तों को बहुत दिव्य आनंद दिया। जो वेदना, जो कष्ट ब्रजवासियों ने अनुभव किया जब श्री कृष्ण काली के भुजाओं में थे, वो कष्ट नहीं, वास्तव में दिव्य आनंद प्रदान किया भगवान ने उनको। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की काली दमन लीला यहीं पर समाप्त होती है।
तो जी, नागपत्नियां नाग योनि में होने के बावजूद भगवान के बारे में और धर्म के बारे में इतना कुछ जानती थी, इसके पीछे भी कुछ कारण था?
ये वैसे साधारण सांप नहीं थे इस पृथ्वी के, ये नाग लोक से नीचे से आए थे, महातल से। भगवान के भक्त हर एक लोक में रहते हैं, केवल ऐसा नहीं कि पृथ्वी लोक में, भूलोक में, भूवर लोक में है, स्वर्ग लोक में, महर लोक, तप लोक, जन लोक, ब्रह्म लोक, और जो नीचे के लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, सब में भगवान के भक्त हैं। सुतल लोक में बलि महाराज निवास करते हैं, जो आत्मनिवेदन के आदर्श हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त सब जगह ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं, केवल बेलगाम में कम है, लेकिन बाकी सब जगह हम देखते हैं फैले हुए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नागपत्नियां भी भगवान के भक्त थीं। वैसे ये भी भगवान की लीला है, क्योंकि वो कालिया दमन लीला करना चाहते थे और उनकी पत्नियों को, पत्नियों के द्वारा गरुड़ कालिया को बचाना चाहते थे, तो उस प्रकार से भगवान ने भी उनको ऐसा जन्म दिया कि वो कालिया की पत्नियां बने, ताकि वो लीला में भाग ले सके। आखिर श्री कृष्ण की लीला में शामिल होना यह कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए उनको ऐसे योनि दे दी।